नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सांसद से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने कहा, सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए इस वर्ष ऐतिहासिक निर्णय लिए। देश के उत्तरी भागों में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, कोहरे और कम दृश्यता के कारण 148 उड़ानें रद्द। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के ढाका में हो रहे अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की संशोधित तिथियों की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं जो विकसित भारत 2047 की दिशा में देश की राष्ट्रीय यात्रा में महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है। नई दिल्ली में भारत 2026 कैलेंडर लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि ये सुधार समावेशी विकास सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिरता बढ़ाने और देश के दीर्घकालिक विकास के लिए एक स्थायी आधार तैयार करने के स्पष्ट उद्देश्य से प्रेरित है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि कैलेंडर का डिजाइन बहुत सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है और यह सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है और सरकार के संचार माध्यम के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में मनरेगा सहित कई योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कल भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री चौहान ने आरोप लगाया कि वित्तीय धोखाधड़ी के लगभग 10,653 मामले सामने आए हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के अंतर्गत जिन गतिविधियों की अनुमति नहीं मिली वहां अनियमितता व्यय किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों ने शिकायतें की है कि उन्हें उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने आज तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि डीएमके शासित सरकार में नागरिक सुरक्षा नहीं है। राज्य में ओडिशा के एक व्यक्ति पर 4 नाबालिग द्वारा किए गए कथित हमले का जिक्र करते हुए डॉ मुरगन ने कहा कि महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों, श्रद्धालुओं और यात्रियों की कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी नशे की हालत में थे। डॉ मुरगन ने कहा कि सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना राज्य सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन वे विफल रहे। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC डिजिटल कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाकर देश के ई कॉमर्स परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ONDC ने पिछले 4 वर्षों में सभी की भागीदारी को सक्षम बनाकर और नवाचार तथा सहयोग को बढ़ावा देकर उत्पादन और सेवाओं के ई कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2025 भारत के लिए सुधारों के वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। इस वर्ष विभिन्न सेक्टरों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए जिससे देश की विकास यात्रा को गति मिली। सोशल मीडिया पर साझा लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने संस्थाओं को आधुनिक बनाया, शासन को सरल और सुगम बनाया तथा समावेशी विकास की नींव मजबूत की। श्री मोदी ने कहा कि श्रम कानून और व्यापार समझौते से लेकर साजो सामान, ऊर्जा और बाजार सुधारों तक भारत की विकास यात्रा विश्वसनीयता, स्थायित्व और भरोसे पर निर्मित रही है। श्री मोदी ने कहा कि इन कदमों से 2047 तक विकसित भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार राजधानी के मानिक मियां एवेन्यू में हो रहा है। मानिक मियां एवेन्यू और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डॉ जयशंकर ने जातीय संसद भवन में BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को भारत की आधिकारिक शोक संदेश सौंपा। तारिक रहमान के बेटे जेमा रहमान सहित BNP के वरिष्ठ नेता और परिवार के सदस्य उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अयोध्या में राम मंदिर परिसर के भीतर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। अन्नपूर्णा मंदिर राम मंदिर परिसर के सात मंदिरों में से एक है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण कार्य के औपचारिक समापन के उपलक्ष्य में भव्य भगवा ध्वज फहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाई जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इसको आस्था और परंपरा का एक दिव्य उत्सव बताया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज दोनी पोलो दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खांडू ने कहा कि यह दिवस हमारे स्वदेशी जड़ों की एक शक्तिशाली पुष्टि है। उन्होंने कहा कि दोनी पोलो कोई विश्वास नहीं बल्कि यह एक पहचान है। उन्होंने कहा कि यह नैतिकता, प्रकृति के साथ संबंध और सच्चाई की समझ की नींव है। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की अंतिम उच्च गति परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण कोटा नागदा रेल खंड पर किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पानी से भरे गिलास की स्थिरता का प्रदर्शन करने वाले वीडियो साझा किया। इसमें पानी से भरे गिलास तेज गति से पर भी बिना छलके स्थिर रहे। यह इस नई पीढ़ी की ट्रेन की उन्नत सवारी गुणवत्ता, बेहतर सस्पेंशन और तकनीकी मजबूती को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने उन पर गृहमंत्री अमित शाह को कथित तौर पर धमकी देने का आरोप लगाया। अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भुवनेश्वर में मीडिया को बातचीत करते हुए यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में जनसभा में गृहमंत्री को धमकी दी थी। श्री पात्रा ने कहा कि उन्होंने न केवल गृहमंत्री का बल्कि पूरे देश की जनता का अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी राज्य में तानाशाह चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली के राय पिठोरा सांस्कृतिक परिसर में पवित्र पीपल हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 19वीं सदी में खोजे गए पीपल हवा अवशेषों को गौतम बुद्ध के से संबंधित माना जाता है, जिन्हें शाक्य वंश द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। मध्य प्रदेश में इंदौर के भागीरथपुरी इलाके में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई, 35 लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों को 2,00,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों को उचित और गुणवत्ता उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की संशोधित तिथियां घोषित कर दी है। CBSE के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षा जो पहले 3 मार्च को निर्धारित की गई थी, अब 11 मार्च को आयोजित किया जाएगा। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा की तिथि 3 मार्च के स्थान पर अब 10 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कल तक 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भागीदारी का व्यापक स्तर परीक्षा पे चर्चा को एक सच्चा जन आंदोलन साबित करता है। देश के उत्तरी भागों में घने कोहरे के कारण आज रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। दिल्ली आने वाले 50 से अधिक रेलगाड़ियां देरी से चल रही है। कोहरे और कम दृश्यता के कारण आज 148 उड़ानें रद्द कर दी गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज कड़ाके की ठंड और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।